ईशावासमिदकं सर्वं यत्किंचित् जगत्प्याम् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधे कस्य श्रीधनम्। ये यजुर्वेद का मंत्र है, इसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश जो भगवान है, ईसाइयों का ईसा नहीं, संसार को बनाने वाला ईश, इससे ईसा बना होगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो संसार सब वर्तमान है, वो भगवान इस वो अपने अंदर धारण कर करके ठहरा हुआ है। जैसे ये आकाश सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, आकाश भी ऐसे धारण किए हुए है। सर्वत्र आकाश मिलेगा, बिना आकाश के इन पदार्थों का, सूर्य चंद्र आदि का गमन नहीं हो सकता। तो यत किंचित जगत्याम, जगत जो कुछ भी संसार में है वो परमात्मा के गर्भ में रहता है, अंदर और बाहर व्याप्त होकर के परमात्मा। तेन त्यक तेन भुंजी था, वो इसमें रहते हुए भी उसने इसका त्याग किया हुआ है हमारे लिए, हमारे भोग और मोक्ष के लिए संसार प्रदान किया हुआ है। इस संसार में हम भोग करने आते हैं और फिर मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। तो संसार में जो धन और ऐश्वर्य भगवान का दिया हुआ है उसका उपभोग करो, जिस पर अपना अधिकार हो, जो अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ, दूसरे के धन की आकांक्षा इच्छा ना करो, दूसरे के पदार्थों की, दूसरे के ऐश्वर्य की, अपने पुरुषार्थ से जो कमाया जाए वो सात्विक धन और ऐश्वर्य कहलाता है और वो सुख शांति का हेतु होता है। ये इस मंत्र में प्रतिपादन किया गया है। सायंकाल को प्रसंग चल रहा था, संसार में दुखों की निवृत्ति का, क्योंकि कोई भी प्राणी ऐसा दृष्टि गोचर नहीं होता कि जिसको किसी न किसी प्रकार का दुख या चिंता या शोक ना हो, चाहे मानसिक दुख हो, वेदना हो, शारीरिक व्याधि हो, रोग हो, और कोई कष्ट हो, या अंतःकरण में कोई और विकार हो, मानसिक विकार हो, तो तीन प्रकार के ये जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुख होते हैं, ये दुख कैसे निवृत्त होंगे उसके ये चार साधन बतलाए। सभी प्राणी मात्र सुख की इच्छा को लेकर कर्म करते रहते हैं, परंतु फिर भी दुख आते रहते हैं, बलात्कार से भी, अपनी गलतियों से भी, और कर्म भोग से भी, तीनों कारणों से आते रहते हैं। तो कुछ न कुछ दुख बना ही रहता है। तो इनकी निवृत्ति के लिए चार साधन बतलाए, धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य। तो पिछले दो दिन के उपदेशों में धर्म और अर्थ का वर्णन किया गया था कि धर्म को सामने रखकर, लक्ष्य में रख करके अर्थ का संग्रह करें, लोक का संग्रह करें, लोक के पदार्थों का संग्रह करें अपने उपभोग के लिए और दूसरों के लिए भी।
फजल
आज, कल तो परसों बतलाया गया था कि संसार के पदार्थों का संग्रह धर्म को साथ में रखते हुए करे, ताकि वो सुख शांति आदि का कारण बन सके संसार के पदार्थ, वरने अंतिम दुख का ही हेतु बनते हैं। चोर डाकू आदि बड़ा धन संग्रह किया करते हैं, अंत में जब पकड़े जाते हैं तो फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। तो इसलिए बुरे कर्मों का फल तो यहाँ मिलता ही रहता है। जो विधि विधान बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके आधार पर चलने पर सुख माना जाता है। कुछ ऐसे भी विधि विधान, जैसे एक ब्रह्मचारी के धर्मों में अंतर होता है, गृहस्थी के धर्मों में अंतर होता है, वानप्रस्थी के धर्मों में अंतर होता है, और एक क्या नाम सन्यासी के कर्मों में और धर्मों में अंतर होता है। इसी प्रकार प्रजा पब्लिक के और राजा के धर्मों में भी अंतर होता है। राजा को अनेक प्रकार के पाप भी करने पड़ जाते हैं और पुण्य भी करते हैं। राजे लोग देश जाति के उपकार के अनेक कर्म करते हैं, ये पुण्य कर्म है। आपत्ति मुसीबत आती है देश के लिए, मर बिटते हैं, युद्ध करते हैं, बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। तो इसलिए ये राजा का और प्रजा का धर्म अलग होता है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने व्यवस्था सी बना दी है आश्रमों की, वर्णों की, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थी का धर्म, वानप्रस्थी का, सन्यासी का धर्म। तो ऐसे ही आश्रमों का धर्म, शूद्रों का धर्म, वैश्यों का धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ब्राह्मणों का धर्म, तो ये एक प्रकार की व्यवस्था सी बना दी है। तो वर्तमान युग कुछ ऐसा आ रहा है, सांक्रिय करना चाहता है, कोई वर्ण नहीं रहना चाहिए, कोई आश्रम नहीं रहना चाहिए। सब प्रकार के मार्ग इस वक्त भी वर्तमान हैं। एक है अर्थवाद का, जिसको धर्म और अर्थ हम कह रहे थे। एक तो मार्ग ये है जिससे लोक का संग्रह होता है, परंतु परम शांति से नहीं मिलती। दूसरा मार्ग है ज्ञान और वैराग का, ये लोक भी उससे पवित्र होता है, और परलोक भी कोई अगर मरने के बाद भी कोई मिलता है कुछ, तो वो भी पवित्र होता है। तो उसमें दो साधन प्रधान है, ज्ञान और वैराग। अब जैसे ज्ञान की बात है, मोटे रूप से समझाते हैं, हमें अपने लिए ये पता है, ये देखते हैं कि ये शरीर जो है, हाड़ मांस आदि, रज वीर्य आदि, इनका एक सात धातुओं का पुतला बना हुआ है। अब इसमें जैसे रुधिर आदि अगर यहाँ अंदर है तो प्यार का, जीवन का हेतु बाहर निकल जाता है। टट्टी हैं, पेशाब हैं, अंदर शरीर में पड़े हुए हैं, हमारे लिए अच्छे, कोई नफरत नहीं, कोई गिलानी नहीं। जब वो बाहर निकल आते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, उनसे नफरत और गिलानी होने लगती है। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि ये इस मलमूत्र का ही एक ये हमें थैला प्राप्त हुआ है। जब तक ये मलमूत्र इसमें ढके रहते हैं, उनको हमें प्यार करते रहते, बाहर निकलते उनसे नफरत हमें हो जाती है। इसी की तो चीज है, अब क्यों नफरत होती है तुम्हें बाहर निकल जाने से। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि इसमें विशेष आसक्ति और विशेष मोह जो है, वो हमारे लिए सदा बंधन का हेतु बना रहा है। हरेक कदम कदम पर हम रात्रि को अंधेरे में भी, हर वक्त भय हमारे पीछे लगा रहता है, मौत का, मरण का। हालांकि हमें सबको ये पता है, मोटी बुद्धि वाले आज, तो एक दिन मरना है, तो उस एक दिन के लिए रोज रोज मरण का भय बना रहता है। अरे तुम निश्चय कर लो, मर जाएंगे जब एक बारी, तो मरना रोज रोज तो नहीं ना मरना, तो तुम रोज क्यों डरते हो? तो ये जो मौत का भय है संसार के अंदर, ये सबसे बड़ा दुख माना गया है। अंतिम दुख मौत का दुख माना गया है, सब इससे डरते, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। तो इस भय की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि देखो मलमूत्र का ये बना हुआ टट्टी, पेशाब से निकलते, यहाँ से भी मल निकलता है, यहाँ से मल निकलता है, थूक में भी मल ही निकलता है बहुत बार, जैसे कफ आदि आ जाता है टट्टी पेशाब से, पसीना आता है, दुर्गंध आने लगती, तो चारों तरफ से इसमें अमृत सा खाते हैं, अन्न आदि, दूध आदि, जल आदि, और विष बना बना करके निकालते दुर्गंध कर कर करके। तो ऐसा निकम्मा ये शरीर है, जिसको हम इतना स्नेह और प्यार करते हैं, कदम कदम पर इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके ज्ञान की आवश्यकता है, भाई तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, एक दिन इसमें मरना, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसमें मरना है। और ये बना किन चीजों का है? कोई ऐसी चीज स्थाई अमृत के रूप में तो है ही नहीं, टट्टी मल पेशाब आदियों से इनसे ये बना हुआ है, इनका ये पुतला है, तो इसके साथ में इतनी आसक्ति, सर्वत्र भय से डरते रहना, सर्वत्र गया चिंतन ही करते रहना, इसको बचाने की कोशिश करते रहना इसकी। ठीक है, रक्षा आदि करना चाहिए थोड़ा, कि कुल्हाड़ी पैर में मारूं जानबूझ के, कुल्हाड़ी से बचना चाहिए रहना। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश, ये पांचों कलेश इसके साथ में लगे रहते हैं। अविद्या ज्ञान, अस्मिता अहंकार की भावना मैं हूं, राग सारे पदार्थों के साथ राग, द्वेष जो विरोधी है उनके प्रति द्वेष, और अभिनिवेश जो मरण त्रास और भय, ये पांचों दुख और कलेश इसके साथ में हर वक्त लगे रहते हैं और सबको लगे रहते हैं, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो ज्ञानी हो, सबको देखने मारते हैं। बहुत से व्यक्तियों को ज्ञान की भावना, वैराग की भावना मरण पर्यंत भी नहीं हो पाती, और बहुत से व्यक्तियों को बाल्यकाल में भी देखी गई है। तो इन बातों से ऐसा सिद्ध होता है, पुनर्जन्म की फिलॉसफी से सिद्ध होती है, जिन छोटे बालकों को बाल्यकाल में ही इस प्रकार का ज्ञान और वैराग हो जाता है, उन्होंने कोई पढ़ा सीखा तो है नहीं, हम भी सारी जिंदगी ज्ञान वैराग की घूटियां पीते रहते हैं, हमें तो कभी नहीं होता। जैसे आप लोगों में भी बहुत बैठे हुए, तो नचिकेता नाम का 14 साल का बालक यमराज के पास गया, पिता ने घर से निकाल दिया, तो यमराज के पास गया तो यमराज ने पूछा, भाई तू किस लिए आया है? कहने लगा कि मैं तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया। तो कहने लगे, वो सोचने लगे कि ये बालक छोटा सा बच्चा है, 12-14 साल का, इसको क्या ज्ञान वैराग की बात सुनती है, ऐसे ही बच्चा है बहल जाएगा। तो उससे कहने लगे कि भाई तू इसके बदले में कोई और चीज ले ले, धन दौलत पैसा आदि, क्या करेगा तू ज्ञान वैराग को? तो उसने बहुत उसको समझाया, नचिकेता को बड़े लोभ दिए, क्योंकि यमराज अपना राज्य भी करता था, उसकी स्टेट भी थी, स्टेट भी देने के लिए तैयार हो गया। तो ये बालक इतना वैरागवान था, सारी संपत्ति विभूति को देते हुए देखकर कहता है कि शो भावामर्तस्य यद अंतकायतात् सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तभी बाहास्तव निर्तगीते। हे महाराज, ये जो धन दौलत ऐश्वर्य आदि आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, ये तो उत्पन्न होने वाली चीज है, कल उत्पन्न हुए परसों को विनाश हो जाएगा। तो शोभावा मर्तस्य यद सर्वे इंद्रिया जा, और ये संसार, ये जो भोग विलास आदि की सामग्री देते हैं आप मुझे, ये तो शरीर और इंद्रियों के तेज को, शक्तियों को नष्ट करने वाली है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और जो कुछ आप दे देंगे वो तो जल्दी खत्म हो सकता है, फिर मुझे कहां से आएगा, फिर क्या बनेगा बाद में? जो उत्पन्न होने वाली चीज उसमें विनाश भी हो जाना। अपि सर्वम जीवित तभी बाहर सब मृत्यु जीते, इसलिए महाराज ये आपके लिए मुबारक हो, मुझे इनकी आवश्यकता। ये है ज्ञान और वैराग की भावना। तो जब तक इस प्रकार की भावना मन के अंदर नहीं होगी, तब तक यथार्थ सुख शांति की संभावना नहीं समझनी चाहिए। पहले जो दो मार्ग बतलाए थे, धर्म का और अर्थ का, वो बंधन ठीक है, संसार का जीवन को सुखी बना रहता है, पर वहां सुख थोड़ा होता है, दुख ज्यादा होता है। अमीर से अमीर आदमी के पास चले जाओ, जिसके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य है, उसको ज्यादा चिंताएं देखने में आती हैं, ज्यादा दुख देखने में आते हैं। जितना जितना ऐश्वर्य संपत्ति विभूति पास होती है, उतने उतने बंधन और दुख और कलेश उसके लिए ज्यादा हो जाते, बहुत जकड़ा जाता है। और जिनके पास थोड़ी होती है, उनको बंधन भी थोड़ा होता है। इसलिए ज्यादा विस्तार जो है इसका अंतिम क्योंकि परिणामता संस्कार दुखी गुण वृद्धि विरोधाच्य दुखम ये सर्वम, ज्ञानी के लिए सब ये दुखों की प्रतीत होती है। तो यमराज से कहता है कि महाराज तुम्हारे लिए ये मुबारक हो, मुझे इसकी। फिर आचार्य से कहता है पहले कह दो। और ये उसको और समझाते हैं और प्रलोभन देते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान स्वच्छंद था प्रार्थस्व इमा रामा स रथा सतुरिया निहिदर्शा लभनीया मनुष्य। हे बालक हे बच्चे, जो ये विभूति मैं तुझे देता हूँ, संसार के सब लोगों को ये प्राप्त नहीं होती। कोई कोई बिरली महान आत्मा को ही संसार में प्राप्त होती है। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके संसार के लोक में ये जो राज की सामग्री हैं, प्रत्येक व्यक्ति कितने राजा तुमको मिलेंगे इस सारी इंडिया के अंदर। सर्वान का मानस छंद था प्रार, इसलिए जो तेरी इच्छा है संसार की विभूति राज्य की विभूति, ये मेरा राज्य है, मैं ये भी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मेरी राजकन्या युवावस्था की यह भी तुझे देने के लिए और सारी स्टेट में देने के लिए तैयार हूँ। तू आत्मा के विषय में कुछ ना देखो क्या उन्होंने आका था मूल तत्व विज्ञान का और वैराग्य का, स्टेट धन संपत्ति सारी विभूति आत्मा के बदले में देने लगा और आत्मज्ञान नहीं देना चाहता था। तो कितना महत्व इस आत्मज्ञान का उसने आका है। ज्ञान की भावना आपके अंतःकरण में सत्संग से अभ्यास से जागृत होनी चाहिए कि इस शरीर का स्वरूप भी मालूम हो जाए कि ये वास्तविक में अजर अमर रहने वाली चीज नहीं है, ये उत्पन्न हुआ विनाश होना है, मल मूत्र आदि इनका एक थैला बना हुआ है जो मुझे जीवन के आधार का हेतु बना हुआ है। इस शरीर के अंदर भी बहुत मोह ममता ना होवे, इसमें विशेष आसक्ति ना होवे, और ये तो अपने लिए है, दूसरों के लिए तो और भी बात है। दूसरों के प्रति भी इतनी आसक्ति इतनी ममता इतना मोह ना हो कि उनके लिए मर मिटे। तो मर मिटने के लिए तो ये ज्ञान और वैराग्य है, जीते जी एक प्रकार से मरण जैसी बात। अनमिले के तो त्यागी सभी बन जाते हैं। मेरी तो भावना यह है कि सारे पदार्थ संसार के भोगतव्य पासों और फिर उनके उपभोग की भोग की भावना पैदा ना हो, उनको परम सुख शांति का हेतु ना समझे, तो सारी विभूति होते हुए उनके प्रति त्याग और वैराग की भावना हो। धन दौलत ऐश्वर्य पति पुत्र आदि सब कुछ ग्रह आदि होते हुए संपत्ति होते हुए और फिर उनके प्रति त्याग और वैराग की भावना रहे, आसक्ति ना हो, इसका नाम होगा ज्ञान और इसका नाम होगा वैराग्य। अभ्यास प्रारंभ करना है, आधा घंटा उपदेश सुनते हुए आपको हो गया और एक घंटा आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में ये बात करनी है, जिनका प्राण के अनुसंधान में मन ना लगे, ज्योति के अनुसंधान में मन ना लगे और किसी में, तो वो मंत्र जाप करें। इधर उधर दौड़ते हुए मन को मंत्र पर ठहरा दें, गायत्री मंत्र पर ठहरा दें, नमो भगवते वासुदेवाय पर ठहरा दें, नमः शिवाय पर ठहरा दें, ओम पर ठहरा दें, परमात्मा के जिसमें गुरु का वर्णन किया हो महिमा, ऐसे मंत्र पर मन को ठहरा दें। थोड़ी देर मन उस पर टिका रहे, संसार से इधर उधर से हटा रहेगा, फिर उसको ज्योति के द्वारा आत्म प्रत्यक्ष करने की बात करें, प्राण के द्वारा आत्मा को स्पर्श करने की बात करें और शब्द के द्वारा उसको टच करने की बात करें और हर एक चीज के द्वारा उसको स्पर्श करने की मिलने की बात करें। अब ये ज्योति आदि परमात्मा आत्मा के अंदर ये विशेषता है, यदि तुम प्राण को लेकर के उसको जानना चाहोगे तो प्राण के तद्रूप सा भासने लगेगा, होगा तो वो अलग ही पर अलग होते हुए प्राण की तरह मालूम होने लगेगा। इसी प्रकार ज्योति को लेकर के तुम आत्मा के पास जाओगे तो ज्योति से वो अलग होगा पर ज्योति की तरह भासने लगेगा। जैसे यहाँ दो चीज शीशा पड़ा हुआ हो और उस पर कोई चीज पड़ी हो तो वैसा उस पर आभास पड़ने लगता है, तो आत्मा पर भी वैसा ही आभास प्राण का, ज्योति का, शब्द का और चीजों का, जिसको लेकर के उसके साथ जा मिलोगे वैसा ही वो भासने लगता है। तो इस प्रकार के आत्मा की तुमने अपने शरीर के अंदर खोज कर ली है, इस मस्तिष्क में या हृदय में।